आपकी याद बाबा रह रह के आए,
आपकी याद बाबा रह रह के आए, देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, पहले भी पालना दी आपने कमाल की, अव्यक्त होके सेवा और भी विशाल की,
सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
आपकी याद बाबा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजयोगी मोहन सिंगल भाई जी उपस्थित हैं। एक हाथ की ताली से हम भाई जी का स्वागत करेंगे। भाई जी का परिचय इस प्रकार से है, आप ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ और समर्पित सेवाधारी हैं। आपका जीवन सेवा, सादगी और आत्मिक समर्पण का सुंदर उदाहरण है। आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। आपके चेहरे की मधुर मुस्कान, आपका शांत स्वभाव और आपकी प्रेमपूर्ण वाणी हर आत्मा को बाबा की समीपता का अनुभव कराती है। आदरणीय भ्राता जी ने वर्षों तक संगठन में अनेक जिम्मेवारियां निभाते हुए हजारों आत्माओं को आत्मिक शक्ति से भरपूर कर सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आप सरलता और विनम्रता की जीवंत प्रतिमा है। आपकी हर बात अनुभव की गहराई, आपके हर शब्द में स्नेह और हर कर्म में बाबा की याद का अनुभव होता है। जो भी आत्मा आपके संपर्क में आती है वह स्वयं को विशेष और शक्तिशाली अनुभव करती है। आपका जीवन सेवा की वह ज्योति है जो अनेक आत्माओं में आत्मविश्वास का प्रकाश भर देती है। आप बाबा के ऐसे सच्चे सेवाधारी हैं जो स्वयं गुप्त रहकर हर आत्मा को अपने से आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। ऐसे सेवा की प्रतिमूर्ति आदरणीय भ्राता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप बहुत सुंदर विषय पर अपने अनुभव युक्त विचार हमारे सम्मुख रखेंगे। बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी कैसे बने?
ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आने में कुछ विलंब हुआ। वास्तव में ज्ञान सरोवर में ही था और वहाँ कल से हमारी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग की। और आप सब जानते हैं कॉन्फ्रेंस के कार्यों में, यद्यपि कल भी और आज भी सुबह भी फोन भी आया था, लेकिन मैंने कहा भी था कि हाँ हाँ याद है, लेकिन थोड़ा सा विस्मृति में आ गया क्योंकि कॉन्फ्रेंस के काफ़ी कारोबार चल रहे थे। खैर ये तो ठीक ही है, बाबा कहता है भी है हम बच्चों को कर्मयोगी बनना है, और कर्मयोगी के लिए कि कर्म भी हों, चाहे कॉन्फ्रेंस हो चाहे गोल भाषण करना हो कुछ, लेकिन योग के साथ में पराकाष्ठा रहे। तो आज का विषय, और जब भी ये तीन शब्द कहीं से सुनते हैं तो हमें सबसे पहले साकार बाबा की स्मृति आ जाती है, क्योंकि हमारा ये सौभाग्य रहा है कि जिस दिन जिस घड़ी बाबा ने ये तीन शब्द बोले थे, हाँ आप सबको याद ही है ना कब बोले थे बाबा ने ये शब्द? हाँ 18 जनवरी 1969 अंतिम मुरली साकार बाबा ने चलाई थी। यही हिस्ट्री हॉल था और मेरे लिए तो बहुत बहुत विशेष दिन इसलिए था कि यद्यपि इंजीनियरिंग करके उसके बाद 63 से 67 तक एक बिहार में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है जो कि बाद में आईआईटी हो गया। आईआईटी से हमने 63 से 67 तक 63-67 वहाँ पढ़ाई की, इंजीनियरिंग पास की। और उसके बाद क्योंकि तब तो बाबा साकार में थे तो कोई भी बात होती थी हम लोग साकार में बाबा से पूछ लेते थे। तो जब 67 में 63 में बाबा के कांटेक्ट में पहली बार आए तो ये शब्द भले बाबा ने बोले थे 69 में अंतिम मुरली में, लेकिन इसकी प्रतिमूर्ति तो बाबा शुरू से ही पहले दिन से ही जैसे दिखाई देते थे। जब भी बाबा से कोई मिलता था, हम लोग विशेष करके साकार बाबा से मिलते थे, तो बाबा ऐसे बाहें फैला देते थे, चित्र में जैसे देखा है ना, आओ बच्चे मीठे बच्चे हैं, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन आओ, बस बाबा का ये कहना होता था और हम लोग एक चुंबकीय आकर्षण में खींच करके बाबा की बाह में चले जाते थे। सदैव ऐसा होता था, लेकिन उसके बाद जो होता था वो एक विशेष अवस्था थी। ये तो स्थूल में बाबा की बाह में आ गए, लेकिन बाबा का स्पर्श, सानिध्य, बाबा की दृष्टि, बाबा का हाथ, ये सब इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन जैसे देते थे कि बस बाह में जाते ही हम सब लोग विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे एकदम। क्यों? क्योंकि हम सब ने सुना है बाबा ने बहुत अभ्यास किया था अशरीरीपन का, लिखा भी था मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, सबको आत्मिक रूप से देखने का। तो उससे क्या होता था कि बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, नैनों में दृष्टि दी और जैसे बाबा ने कहा, पता चलता है बच्चों को कि बाबा नैन में देख रहा है या भ्रकुटी में देख रहा है। साकार में भी बाबा थे, अव्यक्त रूप में भी, बस यहाँ देखते थे और देखते देखते ही बस बाबा चूंकि खुद इतना पक्का अभ्यासी था तो हम लोग भी कुछ क्षण के लिए जैसे विदेही हो जाते थे। और विदेही तभी हो सकता है व्यक्ति जब इन तीन शब्दों का प्रैक्टिकल अभ्यास और शक्तियां उसके पास वाइब्रेशन के रूप में अपने पास भी हो और जिस व्यक्ति से मिल रहा है उसके पास भी हो। क्योंकि जैसे ही मिलते थे ये, तो बाबा देखता था तो पहली अवस्था निराकारी, अशरीरी, विदेही, देहभान से परे। तो ये अवस्था जैसे ही बाबा दृष्टि देता था वो हो जाती थी और इस स्थिति में थोड़ा रहते थे। ये स्थिति क्योंकि बाबा का इतना वाइब्रेशंस शक्तिशाली थे और बाबा ने बताया है सबसे सूक्ष्म चीज है मनुष्य की वृत्ति। वृत्ति संकल्पों से भी सूक्ष्म चीज है अंदर, और जो ऐसी अवस्था में ज्यादा अनुभव की जा सकती है जब कॉन्शियसनेस ना हो और कॉन्शियस बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, अचेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, बस देखा बाबा को तो पहला निराकारी स्थिति, जैसे बाबा को देखते थे, बाबा नैनों में देखते थे, भ्रकुटि में देखते थे, वो अवस्था होती थी। फिर मंशा के बाद, मंशा तो अंदर की चीज है, तो उसके बाद आती है वाचा। तो वाचा में ना बाबा मिलने के बाद, हाँ बच्चे, बस उसके बाद बाबा कहाँ से आए हो बच्चे, क्या नाम है, तो वो सब पूछते थे। तो वाचा में वो वाइब्रेशन जैसे बताया ना, सबसे पहली है वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनता है और वो वाइब्रेशन हमारे ऑरा से बहुत स्पष्ट होता है। तो बाबा से मिलते थे, पहली बार जब मिले तब तो उतना ज्ञान बाबा का इस रूप में नहीं होता था कि ये भगवान का रथ है, इसके अंदर ये ब्रह्मा है आदि आदि बस। लेकिन इसका अनुभव मनसा से लेकर कर्मणा तक तीनों बातों में उसमें छोटे से मिलन में हो जाता था। क्योंकि वृत्ति यही है, वृत्ति शब्द भी व्रत से बना है, व्रत माने सर्किल, और ये वृत्ति जो है हमारी, वृत्ति से जब वाइब्रेशंस निकलते हैं तो तीसरी बात बाबा ने बताई है क्या, वायुमंडल बनता है। तो ये जब मंशा के बाद वाचा में बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हम जब पहली बार मिले, बाबा ने पूछा बच्चे क्या नाम है, तो एक्चुअली मेरा नाम लौकिक में श्री है, श्री बोलते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा ये श्री नाम है और सिंगल सरनेम है ऐसा। तो क्या बच्चे, क्या बोला? फिर मैंने रिपीट किया तो बाबा ने कहा, अरे बस बाबा इतना जॉली स्वभाव का मूड का था, ये विश्व महाराजन के लक्षण होते हैं, हर एक को अपना महसूस कराना, बच्चों के साथ बच्चा जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा। तो बाबा, मैं तो उस समय 16-17 साल का था, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी कर रहा था, जब 62 की बात है ये। तो बाबा से जब मिलके ये, बाबा ने कहा, अरे बच्ची आओ, दादी आओ, गंगे आओ, कुमार का आओ, जो दादी के पास रहते थे, क्योंकि ये पहली बार कानपुर में मैं मिला था, लखनऊ से कानपुर। आज बाबा को एक बच्चा मिला है ऐसा जो बाबा से भी महान है, ऐसा हो सकता है क्या? और हमने सोचा ये तो जैसे कहते हैं ना लौकिक में कहावत कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, हा? तो बाबा से मिले और बाबा ने कहा, क्यों कहा बाबा ने, ये तो ज्ञान था नहीं, कुछ महीने ही हुए थे। तब बाबा ने उसका स्पष्टीकरण किया कि बच्चे अभी तो श्री शब्द बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता अपने आगे। क्यों? क्योंकि श्री उनको कहते हैं जिनकी आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। तो ये वाचा से जब बाबा ने ये कहा और उसके बाद बताया कि अब तुम्हारा नाम बाबा बदलता है, तुम्हारा नाम मोहन और श्री जैसा तुम्हें बनना है। श्री माने आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र। जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनके दोनों पवित्र होते हैं। अब हम लोगों का तो, हम लोगों माने इस दुनिया में तो सबका बाबा, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहता था, देखो ये भी ना श्री नहीं, क्यों? क्योंकि शरीर भी विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा तो पतित बनी गई है सतयुग से आते आते, पावन 16 कला से होते होते 9 कला हो गई है। तो दोनों को पवित्र बनाना है, तो वाचा से भी वही वाइब्रेशन, और फिर कर्मणा से जैसे ही बाबा मिलते थे, मिलने के बाद ना कर्मणा में क्या है, तीसरा शब्द बाबा किसके लिए बोलता है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो वो किस तरीके से अनुभव होता था कि साकार बाबा ना मिलते थे, टोली खिलाते थे और उसके बाद टोली के बाद, हाँ बच्चे कुछ पूछना है, या बाबा बताता था कि ये करना है, ऐसे करना है, वार्तालाप मनसा वाचा और कर्मणा। तो कर्म में भी ऐसे उनके बाबा के वाइब्रेशन निकलते थे और वो अनुभव होता था। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमें तब मिला, उसमें हम सभी बच्चे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ वर्ष करीब 12-15 साल पहले मेरा रशिया जाना हुआ था, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग जगह है, तो वहाँ का एक साइंटिस्ट होके गया है वो किरलियन नाम से। तो उसने ऐसा कैमरा बनाया था कि कैमरे से फोटो लो ना किसी का तो उसका ऑरा भी आ जाता था। अभी हम साधारण रूप से एक दूसरे को देखते हैं, शरीर दिखता है, लेकिन उस कैमरा से फोटो लो तो हर एक का यहाँ पर लाइट का ताज है, हम सब का, लेकिन सबके लाइट अलग अलग है। जैसी जिसकी पवित्रता है वैसी उसकी लाइट का ताज, वो उस कैमरे की फोटोग्राफी से निकलता है। तो मैं भी जब गया था तो किरलियन को वहाँ बुलाया था, किरलियन तो अब नहीं है साइंटिस्ट, वो तो शरीर, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूशन विश्वव्यापी है, किरलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब फोटोग्राफी। कैमरे से तो जब वो लेता है तो उसने, और यहीं पर ही ऑरा नहीं होता है, हम सबका ऑरा शरीर के एक एक अंग में है। यहाँ पर उंगली का ऑरा निकालो, वो भी उसके चारों तरफ भी लाइट जैसे, नाक का, आंख का, कान का, हाथ का, कुछ भी ऑरा निकालो और ये सम टोटल है, सबका मिला के ये टोटल। तो ऐसी फोटोग्राफी थी वहाँ। तो वहाँ पर उसने ये हमारा भी निकाला, हम वहाँ गए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम था पर्यावरण के ऊपर 12 से 15 दिन तक का। तो उसके अंदर उसने ये पहले निकाला, फिर उसने कहा मैं इसका रिजल्ट आपको बाद में बताऊंगा। तो हर जगह इंस्ट्रूमेंट होता है, उंगलियों का भी, आंख का, सब के ऑरा निकाल के फिर जब 5-6 दिन के बाद मिले और तो उसने बताया। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बताया कि मेरे पास दुनिया के सब तरफ के लोग आते हैं, सब धर्मों के लोग आते हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी वगैरह सब धर्म के, और सब देशों के, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब तरफ से, और सबके मैं ये ऑरा निकालता हूँ वो इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये ऑरा फिर इंटरप्रेट करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसमें इंटरप्रेट करके। फिर उसने बताया कि मुझे बड़ा मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है ये बताते हुए कि दुनिया के सब धर्म वाले और सबके देश वालों का ऑरा हम निकालते हैं, लेकिन जितना बढ़िया ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना बढ़िया ऑरा किसी दुनिया के आदमी का नहीं होता। ऑरा जो हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतीक है, आंतरिक स्थिति होती है वैसा ही वो व्यक्ति व्यवहार करेगा, बोल होगा उसका, और वैसा ही उसके कर्मों में वो होगा, पवित्रता होगी, निर्माणता होगी, जो बाबा कहते हैं निर्माण निर्माण, जो दादी के भी शब्द थे। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ना जो भी धारणाएं करते हैं वो हमारी अंदर से धारणा होती है पवित्रता की, और वो यहाँ से और अब विज्ञान के इस इंस्ट्रूमेंट से तो सबका सिद्ध होता है। तो इसीलिए बाबा का प्रत्यक्षता का एक तो ये साधन है। और ये बाबा ने अंतिम दिन बोला, वो भी उसका भी एक राज है, क्योंकि बाबा के से तो 62 से हम लोग हमेशा मिलते थे और बस बस के पास आए, मिले, बाबा ने दृष्टि दी, कोई प्रश्न होता था पूछते थे, बाबा उसका जवाब देते थे, और बाबा को कुछ कहना होता था बाबा पूछते थे, बताते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा अव्यक्त होते जा रहे थे, 62 से 69 के बीच में हम बहुत बार बाबा से मिले, क्यों, क्योंकि पढ़ाई भी करते थे, साल में 3-4 बार इंस्टीट्यूशन की छुट्टी हो जाती थी और वो छुट्टी से हम यहीं पर ही मधुबन में ज़्यादा आते थे, तो मधुबन में भी बाबा मामा से मिलने का सौभाग्य मिलता था। दिल्ली में 2 बार बाबा आए तब बाबा से मिले, कानपुर में मिले जैसे बताया मैंने आपको। तो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों शब्द हम जानते हैं, मनसा में जितनी जितनी निराकारी स्थिति होगी वाचा में भी वैसी स्थिति होगी, और कर्मणा में बाबा के साथ जब मिलेंगे, बाबा चलो बच्चे घूमने चलते हैं, कई बार घूमने ले जाते थे, हमें याद है हम आए थे जब बहुत यंग थे, मधुबन उतना डेवलप्ड नहीं था, तो बाबा ने हम लोगों को, तब मैं 17-18 साल का होऊंगा, नीचे ये बन रहा था जो शांति स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेंटर है, कच्चा ही मकान था, कच्चा ही जमीन थी, तो वहाँ पर क्योंकि रिलेटिवली यंग लोगों को, कुमार लोगों को वैसी ही व्यवस्था दी, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको फिर चारपाई वगैरह। तो यहाँ पर तो बाबा मम्मा के बाद बाबा रोज चक्कर लगाते थे हर एक जगह का, कौन बच्चे को क्या साधन मिला है। बाबा उस कमरे हमारे कमरे में भी आए तो अरे बच्चे कहाँ है, बाबा ने देखा चारपाई तो थी नहीं, जमीन पर ही बिस्तर लगाया हुआ था, दड़ी वगैरह गद्दा। अरे बच्चे यहाँ क्यों, तो लच्छू दादी साथ होती थी तो बाबा को कहा कि बाबा बहुत लोग आए हैं तो सबको वैसी व्यवस्था दी, और जो यंग लोग हैं और तब उस उनको उसके अनुसार। नहीं 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 बच्चे को चलो चलो बच्चे, बाबा ने उठाया लेटे, तब तो जल्दी ही समय का था 8-9 बजे रात का, चलो चलो बाबा के साथ चलो बाबा के कमरे में। बाबा अपने कमरे में जहाँ बाबा रहते थे, जो अभी भी बाबा का कमरा है, ये तब छोटा ही था और पीछे से इसका रास्ता था, बाद में इसे बड़ा किया गया और सामने से एंट्री दी गई है। तो तब छोटा सा कमरा था, चलो बाबा का ये बेड है, बाबा यहाँ पर सोएगा और तुम कहाँ बैठ के नीचे तुम्हारा बिस्तर लगाया जाएगा, यहाँ पर तुम सो वहाँ नहीं। तो लच्छू बहन ने बोला बाबा ये कैसे वहाँ पर, नहीं 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 बच्चा इतना दूर से आया है और वहाँ से, तब मेरी वहाँ पर ना आसाम में पोस्टिंग थी, इंजीनियरिंग पास करके मैं आसाम में बाबा के डायरेक्ट अनुसार गया हुआ था, वहाँ पर मेरा मतलब पोस्टिंग थी पहली ONGC में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो नहीं नहीं बच्चे वहाँ से यहाँ पर बाबा, तो बहुत बाबा को कहा कि नहीं नहीं बच्चे बाबा मैं वहाँ पर आराम से सोऊंगा, क्योंकि ऐसा अभ्यास बाबा को मतलब रात को नींद आए ना आए, मतलब बाबा इतना हर एक को स्नेह देता था कि बाबा ने देखा ये उतना प्रॉपर स्थान नहीं है, तो बेस्ट स्थान जहाँ बाबा की हो, खुद ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ, कैसे उसके वाइब्रेशन होंगे कमरे के, आप समझ सकते हो कितना शक्तिशाली उसका वो स्थल होगा। लेकिन फिर लच्छू बहन वगैरह सबने कन्विंस किया कि बाबा नहीं नहीं बहुत और अच्छा स्थान देते हैं, और वहाँ पर ले गए। तो बाबा सबको ये महसूस कराता था कि जितना बाबा तुम्हें प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, हर एक को। तो वो ही स्थिति जब हमारी होगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो बाबा का भी वायुमंडल इतना शक्तिशाली था, कुछ साइंटिस्ट आए थे वो नाप रहे थे, उस वक्त की बात नहीं, कई साल पहले की बात है, जब साकार में बाबा का रूम में भी गए, उनका इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट में जिस जिस जगह का वातावरण जितना शक्तिशाली होता है वो वाइब्रेशन में प्योरिटी, वाइब्रेशन के अंदर डिग्निटी इंटीग्रिटी, और कितना वो वाइब्रेशन शक्तिशाली है वो नापता था इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें एक नीडल थी और नीडल मीटर के ऊपर चलती थी, तो जैसे ही वो नीडल उस इंस्ट्रूमेंट को बाबा के कमरे में वो ले गए वैज्ञानिक लोग, तो वो नीडल एकदम रेंज के बाहर चली गई पूरा। नहीं तो मीटर नीडल होती है, मानो 0 से 100 तक है, तो कहीं पर अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों पर, कहीं का वातावरण 50 था, कहीं 60-70, ऐसे मतलब जितनी उस वातावरण में शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का, तो वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो नीडल एकदम बाहर चली गई बिल्कुल। कई बार साइंटिस्ट ने सोचा शायद ये स्टक कर गई है, गलत है, बहुत ठोका उसे, देखा बाहर ले गए, तो फिर एकदम कम उस स्थान पर आ गई जैसे ही। तो बता भाव ये है कि बाबा ने अपने कमरे का भी वातावरण जहाँ पर बाबा रहता था वहीं योग तपस्या, छोटा ही मधुबन था तो योग तपस्या, वैसे ही वाइब्रेशन, अर्ली मॉर्निंग में भी बाबा बाहर निकल के बैठ के बस हाथ पीछे करके जैसे बाबा आंगन में टहल रहा है। तो ये बताने का भाव ये है कि वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, अल्टीमेटली बाबा कहता है ना, आपका वायुमंडल उससे बनेगा जैसी आपकी अंदर की वृत्ति होगी, और उसी अनुसार हमारे वाइब्रेशन ऑरा होगा, उसी अनुसार फिर वायुमंडल का भी निर्माण होगा। और यही प्रत्यक्षता का अंतिम साधन है जो बाबा ने कहा था। तो एक तो ये, अब मैं अंतिम दिन की बात आपको खास बताता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो बाबा के साथ 62 to 69 अनेक बार मतलब मिलने का सौभाग्य मिला, लेकिन जब 67 में इंजीनियरिंग पास करके IIT से और जब बाबा के पास आया तो तीन मेरे पास ऑप्शन थे जॉब के, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी वो था ऑफर, फिर एक हैदराबाद में NGRI है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से, और तीसरा ONGC। ONGC माने वो कंपनी जो जमीन से तेल निकालती है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस थी एक्चुअली ONGC। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे ऐसा मिले जहाँ बस 10 से 5 का जॉब हो और बहुत शांतिपूर्ण वो हैदराबाद में, या मेट्रोलॉजी माथुर साहब के पास, माथुर जी ही इसके हेड थे, डायरेक्टर जनरल तब, तो मैं चाहता था इसमें। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तो मैंने कहा बाबा इन दोनों स्थानों में हैं, वहाँ जाएंगे और ONGC में आसाम में जाएंगे, तो वहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है पूरे आसाम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गीता पाठशाला भी नहीं थी, ये मैं 69 की बात बता रहा हूँ। तो बाबा वहाँ पर कैसे हमारी पालना होगी? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पालना तो बाबा ने बहुत दे दी, हो गई 62 से अब 67 तक, और 67 में जब सिलेक्शन हुआ तो बाबा ने कहा अब तुम्हें ONGC में, वहाँ आसाम में जाना है, आसाम में मेरे ऐसे बच्चे हैं। क्योंकि बाबा तक ना, बाबा की मंशा जो है ऐसी थी कि जब हम मंशा में बैठते हैं, बाबा बैठ कहते हैं अपना मंशा का भी टाइम टेबल बनाओ, किस समय क्या करना है, और उस समय बाबा बताते हैं अमृत वेले से लेकर रात तक का बाबा ने पूरा मंशा का टाइम टेबल, अपने वाइब्रेशन कैसे दूसरी जगह दुनिया के किसी भी स्थान तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया का ही नहीं सूक्ष्म वतन परम धाम तक भी वो, लेकिन ये प्रैक्टिकल में वो देखा बाबा के पास। वो भाई आप सबने सुना है विश्व किशोर जी भी थे, तो उन बहुत यज्ञ के मेन मैनेजर, जैसे राइट हैंड ब्रह्मा बाबा के, लौकिक में भतीजे भी होते थे, उन्होंने भी समर्पण किया था। तो उनका बम्बई में उन्हें जाना पड़ा, वहाँ एक ऑपरेशन था उनका हुआ, तो बहुत पेन, पहले 60s में जमाने में तो इतनी पेन किलर वगैरह दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं होती थी, लेकिन वहाँ से रमेश भाई का फ़ोन आता था कि बाबा दादा की तबीयत जो है ना बहुत पेन रहा, रात भर नींद नहीं आई। तो बाबा यहाँ पर अगले दिन पूरा जैसे योग में, और उनको वाइब्रेशन दे रहे, और फिर वहाँ से फोन आता था बाबा आज बहुत अच्छी नींद आई, उन्हें पेन भी नहीं हुआ। तो जब हम किसी को मंशा सेवा का दान करते हैं, वो वाइब्रेशन पहुँचे कि नहीं, वो उसका चेक उसकी अवस्था से हमें सदा मिलता है। नहीं तो हम दान करते रहें, लेकिन दान लेने वाला अगर उतना शक्तिशाली ना हो, तो ट्रांसमीटर तो हमारा पावरफुल है, लेकिन रिसीवर सेट अगर हमारा कमज़ोर है तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो इसीलिए हमें बाबा ने जो बताया है कि बच्चे ये जो है आपकी मंशा सेवा निराकारी स्थिति से हो, और उसके लिए दो तीन दिन पहले भी बाबा ने बताया अवस्था में सदा खुशी आनंद तब जब सब मनन चिंतन चलता रहे, विचार सागर मंथन होता रहे। हमारी अवस्था जैसे शरीर के लिए है पाचन क्रिया बहुत आवश्यक है, शक्तिशाली भोजन तो किया लेकिन अगर पचा नहीं तो उससे शक्ति तो बनेगी नहीं, वो वैसे ही वेस्ट चला जाएगा। ऐसे ही ज्ञान मुरली ज्ञान योग जो हम सुनते हैं उसका अगर हमने विचार सागर मंथन मनन चिंतन नहीं किया तो वो मक्खन जैसे बनता है उस लौकिक में, तो मक्खन ज्ञान का ये नहीं बना तब तक आत्मा जो है हमारी शक्तिशाली नहीं होगी। हाँ मुरली बहुत अच्छी थी, आज बाबा ने इस विषय पर बताया ये करा, वो सब रहेगा लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं मरेगी। तो इसीलिए एक शक्ति का ये साधन है जो बाबा ने बताया और प्रैक्टिकल में उसका देखा भी। तो 18 तारीख को जब हम 17 जनवरी की जब हम जा रहे थे, बाबा भेज रहे थे हमें 1967 में आसाम में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ। हमारा दिल थोड़ा वो हो रहा था कि वहाँ कोई भी सेंटर नहीं है, एक भी भाई बहन नहीं है गीता पाठशाला, तो बाबा ने कहा कि जाओ, बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा। बाबा ने ये करा, समय पर तुम्हें बुला लेगा। तो समय पर बुलाने का मतलब क्या है वो तब स्पष्टीकरण हुआ जब हम वहाँ थे और जनवरी मास में 69 में देहरादून से गए थे, ONGC का हेडक्वार्टर वहाँ कुछ थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह थी, हमारा निवास स्थान भी वहीं। तो बाबा ने कहा समय पर बुला लेगा, तो देहरादून से बहन जी का पत्र आया कि हाँ म्यूजियम बनाने वाले हैं आप आओ थोड़ा डायरेक्शन दो। तो यहाँ वहाँ के लिए बाबा को हमने लिखा कि बाबा ऐसे हमारा विचार है, तो बाबा का तुरंत समाचार आया बच्चे वहाँ तो जाना बाद में, पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ फ्लाइट से आओ। पहली बार हम लाइफ में तब फ्लाइट में भी चढ़े और आसाम से कलकत्ता आए, कलकत्ता से दिल्ली आए और दिल्ली से अपने लौकिक पिताजी को भी बुला लिया था और हम लोग मधुबन 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए, 17 जनवरी 1969। तो 17 और 18 जनवरी को बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखने को मिला क्योंकि बाबा की तो कर्मातीत अवस्था जैसी हो गई थी। तो उसमें क्या देखा, क्योंकि हम सबको भी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तो पहली बात तो ये कि जब भी बाबा से मिलते थे उस समय तो बाबा के पास गए, दृष्टि दी ली। बाबा हमेशा पूछते थे पहले 65 में 66 में 67 में, लेकिन जब 17-18 जनवरी को बाबा से कम 6 बार मिले होंगे, 6 से ज़्यादा ही बार मिले होंगे क्योंकि कोई और पार्टियां नहीं थी, तो बस बाबा ने दृष्टि दी और कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बाबा के मंशा इतनी शक्तिशाली सीधी मन के अंदर उतर के और बात बाबा जान लेता था। और यही बात बाबा ने अव्यक्त मुरली की किताब आप पढ़ो और उसमें जब 13 दिन का भोग लगा था तो उसमें भी बाबा ने कहा था कर्मातीत अवस्था की 13 दिन की 6वें-7वें दिन था शायद ये, और एक मुरली भी कई इस पर चली हैं कि हम जितनी कर्म सूक्ष्म कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे उतना उतना हम तुरंत ही दूसरे के मन के भाव को जान लेंगे, और सिर्फ जानेंगे ही नहीं, वो मन में उसके क्या संकल्प है वो उसको सिद्ध करने की शक्ति भी उसे दे देंगे। तो ये प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया कि बाबा किसे 5-6 बार मिले होंगे 17 और 18 तारीख को, बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने नैन मुलाकात करी, दृष्टि दी और कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो। कभी हम अपनी स्थिति के बारे में, कभी सेवा के बारे में, कभी और वहाँ पर व्यवस्था कैसे बढ़े, क्योंकि वहाँ तो कोई सेंटर नहीं था। तो एक तो ये बात, तो जैसे ही हम लोग की अवस्था उन्नति को पाती जाएगी, तो ये हम किसी भी कोई व्यक्ति हमारे सामने उसी बात को बाबा ने कहा, आपके सम्मुख लोग आएंगे, नैन मुलाकात करेंगे, अपने बहुत प्रॉब्लम उनकी होगी, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए चले जाएंगे, अशांत स्थिति में आएंगे, शांति का अनुभव करते हुए उसके सागर में लहराते हुए चले जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल में बाबा ने सबको एक एक को जो भी इन अंतिम कुछ दिनों में मिले होंगे, मैं तो अपना बता रहा हूँ, 2 दिन में ये अनुभव किया। कई बार अपने ऐसे संकल्प लेके गए थे और कमजोर, क्योंकि नया नया ज्ञान में और वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी, तो जो आतंकवादियों का बहुत, लेकिन गए बाबा के सम्मुख, देखा बाबा ने दृष्टि दी और तुरंत ही उसका समाधान वो दे देते। तो एक ये बात का अनुभव विशेष करना है, और ये बड़ा सहज स्थिति से जो बाबा ने किया वो ही हम बाबा के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र तो बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम, और तब ही हमें जो ये बाबा ने 3 शब्द उच्चारे ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, उस स्थिति का हम अनुभव करते हुए आगे चलते चल सकते हैं। तो एक ये अनुभव किया, और 18 जनवरी को एक विशेष अनुभव ये रहा, हम अंतमति सोगति का गायन है, तो बाबा भी कहता है अंतिम स्थिति ऐसी हो जो आपको और कुछ याद ना आए। तो वो कब होगा अंतिम स्थिति में, जब प्राण हमारे तुमसे निकले ना, न तो कोई व्यक्ति, वस्तु, साधन, कोई भी चीज की स्मृति न रहे, बस मैं और बाबा। तो वो कब होगा, वो बाबा का देखा, क्योंकि सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी 18 जनवरी को, थोड़ी तबीयत जरा ऐसे नाजुक थी, लेकिन इसीलिए बाबा ने 18 जनवरी की रात का अनाउंस कर दिया कि आज बाबा शाम को जल्दी ही 7:30 बजे, रोज क्लास होती थी 8:45 बजे, लेकिन आज बाबा जल्दी क्लास। तो हर एक को हिदायत दी कि सब भोजन करके वहाँ पर आ जाएं और बाबा क्लास कराने आएगा, भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था पहले वही भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का, कितने प्रमाण हैं हम लोगों के पास कि बाबा को पहले से ही आभास था, और वो बाबा को ही नहीं, हम सभी बच्चों को आभास होगा जब हम शरीर छोड़ेंगे, उससे पहले हमें आभास हो जाएगा कि अब मैं ये शरीर त्यागने वाला हूँ, इसके साथ मेरे हिसाब किताब पूरे हो गए। ब्रह्मा बाबा को भी इसीलिए बाबा ने जितने पेंडिंग काम थे, रहे हुए काम, वो सब पूरे किए, और ये तब हो सकता है जब बिल्कुल मंशा हमारी इतनी क्रिस्टल क्लियर हो कि जो शिव बाबा टच करा रहा है उसको हम स्वीकार कर लें, वो कैचिंग को हम ले लें, और अकॉर्डिंगली तभी हमारा वाचा और करुणा में जो बाकी 2 शब्द हैं निराकारी के साथ निरअहंकारी और निर्विकारी, तो सबसे इम्पोर्टेंट मंशा ही है। मंशा में जितना हमारी क्लैरिटी, बाबा ने कहा भी था, मेरे पास हर बच्चे का टीवी सेट है, हर बच्चे का, ब्राह्मण बच्चे का भी। और जब भी कोई बच्चा कोई कमजोर स्थिति में होता है, माया से युद्ध चल रहा होता है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है और फिर वो टीवी में बाबा देखता है इस बच्चे की क्या स्थिति है, तब बाबा ऊपर से ही उसे सकाश देता है। और कई बच्चे सकाश को लेकर के उस मायावी स्थिति से बाहर आ जाते हैं, माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और कई बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते हैं, तो फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को एक तो ये करना है, बाबा के पास जो टीवी सेट है, अपनी अवस्था का, जो बाबा कहते हैं रात को चार्ट लिख के सो, जो ऐसी स्थिति हो सारे दिन की लेन देन बाबा से करके तब हम निंद्रा की गोद में जाए, और उससे ये मनन अवस्था हमारी बहुत शक्तिशाली रहेगी। और जब मनन शक्तिशाली रहेगी तो वाचा और कर्मणा में जो भी कर्म होंगे वो भी शक्तिशाली होंगे। और इसका प्रमाण ये है कि हम सब ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी जैसे सडनली पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, और कई संस्कारों पर हम समझते हैं अरे क्रोध है या ये संस्कार, इस पर तो मैंने लगभग विजय प्राप्त कर ली है, 6 महीने से 8 महीने से 10 साल से मेरे में ये संस्कार है ही नहीं। लेकिन सडनली जब वो संस्कार जागृत हो जाता है, हमारी मनन अवस्था को नेगेटिवली प्रभावित करता है, तो क्या होता है कि वो अवस्था में हम हलचल में आ जाते हैं। तो बाहर तो हमारी स्थिति जितनी बाहर हलचल होगी, भूचाल भी आएंगे, सब प्राकृतिक आपदाओं का बाबा ने वर्णन भी करा है, वो सब आएंगे। आजकल भी कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं प्राकृतिक आपदाओं, कहीं सिविल वार के सारे लक्षण हैं। तो इसका बाहर अति हलचल हो, लेकिन हमारी आंतरिक अवस्था अति अचल हो, ये हमारा अंतिम पेपर है। आएगा हलचल में आए तो बाबा से भी पूछा कि बाबा जब आपने शरीर छोड़ा तो आपकी स्थिति कैसी थी। आप सबने भी सुना होगा, अव्यक्ति मुरली में भी है, तो बाबा ने कहा अंतिम समय बहुत युद्ध चल रहा था मेरा अंदर। क्या युद्ध? एक तो कर्म भोग का शरीर के अंदर, क्योंकि हार्ट अटैक था और डॉक्टर को बुलाने भी भेजा था, डॉक्टर भी आया था, उसने सर्टिफाई बाद में किया। तो जब हार्ट अटैक होता है तो पेनफुल बहुत होता है, तो क्योंकि मुझे भी एक बार हो चुका है, स्टंट पड़ा हुआ है, तो इसीलिए उस अनुभव के आधार पर ही तो बाबा ने भी यही बोला। एक तो युद्ध चल रही थी शरीर के कर्म भोग की युद्ध, और दूसरा योग बल। तो कभी कर्म भोग शुरू में बड़ा पावरफुल था, बहुत पेन था और व्याधि थी जैसे निकल रही थी, वो बाबा को याद ही नहीं करने दे रही थी जब शरीर में बहुत युद्ध हो। और लेकिन धीरे धीरे मैं, यानी बाबा बता रहे थे कि मैं उस व्याधि के ऊपर विजय प्राप्त करता चला गया, कर्म भोग के ऊपर मेरे योग बल ने धीरे 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 विजय प्राप्त कर ली। और योग बल ने कर्म भोग के ऊपर जब विजय प्राप्त कर ली तो बस धीरे धीरे वो भोगना का अनुभव, दुखद अनुभव खत्म होता गया और बाबा ने दे दिया। तो अंतिम स्थिति हम सब बच्चों की है, लास्ट पेपर हमारा ये शरीर से ही आना है। जितने बचे हुए होंगे कर्म भोग वो अंत में शरीर के द्वारा होंगे, और बाबा ने जो बताया और इस स्थिति पर एक दो मुरलियां काफी डिटेल चली हैं, लेकिन उसका सार यही है कि अंतिम समय कर्म भोग के ऊपर योग बल से हमें विजय प्राप्त करनी है, और बाबा ने भी वही किया। और जितनी जितनी हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत होती जाएगी तो भोगना है सब समाप्ति की ओर जाती जाएगी। तो ये तीनों बातें भोगनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है, मनसा वाचा कर्मा। कईयों की भोगना बहुत होती है, आए क्या करें शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, वो देह अभिमान में होते हैं तो उनकी चेतना भी वैसा ही दर्द का अनुभव करती है। हम लोगों को भी होगा, जब शरीर छोड़ेंगे अंतिम स्थिति होगी तो वो भोगना होगी, लेकिन वो क्षणिक होनी चाहिए। धीरे धीरे जो योग बल हमारा इतना शक्तिशाली हो कि भोग के ऊपर विजय प्राप्त, बाबा का एक ये अनुभव अंतिम दिन का। और अंतिम दिन का कर्मातीत का तो वो मैंने बताया कि ये अनुभव कि किसी के भी मन का हाल हम जान लेंगे। तो वो तो देखा अंतिम दिन 18 जनवरी बाबा मुरली चला रहे थे, मैं भी सामने बैठा हुआ था यहीं हिस्ट्री हॉल में, तो बैठे बैठे मेरे मन में जस्ट संकल्प आया कि बाबा कुछ हमारे लिए व्यक्तिगत बोले। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत होता है, मन की बात किसी को कही नहीं, लेकिन बाबा की चूंकि कर्मातीत अवस्था थी, बिल्कुल बाबा का रिसीवर साइड जैसे क्लियर मनसा में संकल्प आया, बाबा ने कैच किया और बाबा ने तुरंत ही महावाक्य उच्चार दिए। आपने सुना होगा 18 जनवरी की मुरली में ना, बाबा ने नाम लेकर बोला, देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये बाबा का जो वरदान प्राप्त हुआ ये अभी तक भी हमें उतनी शक्ति दे रहा है, क्योंकि मन में तो ये संकल्प आया कुछ बाबा बोले और बाबा ने अंतिम क्षणों में 18 जनवरी की आप साकार मुरली सुनो, पूरी इसी के ऊपर चली है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। और हमारा बचपन से ही एक ये संस्कार रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आके हमारे पास बैठ के किसी की निंदा करता है हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज किसी और की निंदा मेरे सामने कर रहा है, कल हमारी निंदा जाके उसके सामने करेगा, वो संस्कार तो अंदर से ही वो नहीं। तो ये इस बात का प्रमाण है अंतिम समय की स्थिति का, जो बाबा की एक ये कर्मातीत स्थिति की अवस्था देखी। तो मुझे ये सौभाग्य मिला अंतिम क्षण तक बाबा के साथ रहे, और 18 जनवरी को बस हम छत पर हिस्ट्री हॉल की छत पर टहल रहे थे, क्योंकि उससे पहले ही बाबा ने कहा था बच्चे जब यहाँ आते हो तो बेहद में आते हो तो यहाँ आके बाबा को याद कर सकते हो। तो उस दिन बाबा ने मुरली जल्दी चला दी थी, तो मैं टहल ही रहा था, इतनी देर में जमुना प्रसाद भाई साइकिल पर बड़ी तेजी से एकदम निकले, तो रात को लगभग 9:30 बजे होंगे और ज़्यादा। तो हमने ऊपर से पूछा, रे इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं दादी जी ने बोला है डॉक्टर को बुला के लाओ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और आप डॉक्टर को लेके आओ। तो वो गए, तो जब हमने भी ये सुना जमुना प्रसाद भाई ने, अभी भी जमुना प्रसाद भाई यहाँ पर होते हैं, कभी भी आप उनसे अवस्था का लेन देन करो, बहुत पुराने हैं। तो उन हमने हम भी गए पीछे और बाबा के कमरे में देखा बाहर से ही कि बाबा जैसे पलंग पर बैठे हैं और बाबा को जैसे बहुत हार्ट का पेन होगा और दादी प्रकाशमणि जी सामने खड़ी है, बोला हमें दादी प्रकाशमणि जी की पीठ जैसे और उनका बैक ये पोर्शन दिखा जिससे उन्होंने बाबा को पार्शली जैसे ढक दिया था। बाबा चार पाई पर बैठे हुए थे और जैसे बाबा को धीरे 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 शरीर को सकाश देते हुए शरीर का पेन को खत्म किया और बाबा कर्म योग बल में एकदम ऊंची स्थिति को प्राप्त किया जिससे कर्म भोग की वासना ही खत्म हो गई। तो ये अंतिम पेपर हम सबके सामने आना है, जितने भी बचे हुए हिसाब किताब होंगे वो अंतिम दिन हमारे सामने। और जो बाबा ने अनुभव भी किया था ना कैसे पैर के अंगूठे से आत्मा निकलती है, आत्मा अपना शक्ति खींचती है, बाबा ने दादा काका का मूलचंद जो बाबा के काका थे उनकी स्थिति का वर्णन बहुत अच्छा किया है, आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है। तो ये अंतिम तीन दिन का तीन महावाक्य बाबा ने जब उच्चारे है तो उच्चार करके बाबा हिस्ट्री हॉल से बाहर आए और बाबा वहाँ खड़े होके अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये बाबा ने अंतिम शब्द कहे। ये अंतिम शब्द क्योंकि तीनों शब्दों का आप जब विश्लेषण करेंगे ना मनसा तो ये पूरी स्थिति बाबा की कर्मातीत अवस्था को सिद्ध करती है। अपनी इच्छा से बाबा ने शरीर छोड़ा, वही तो ब्यूटी है। मरते तो सभी हैं, सभी जाते हैं, लेकिन ब्यूटी तब है हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। बस बाबा को जैसे वासना हो गई थी तो बाबा ने चार पांच पेंडिंग काम निपटाए, वो जो नक्की लेक का म्यूजियम का है वो बिल्डिंग लेनी थी बहुत दिनों से पेंडिंग, वो निपटाया बाबा ने कार्य। सुबह मुरली नहीं चलाई थी तो बाबा ने शाम को इसीलिए बहुत जल्दी मुरली चला के, और तब बाबा ने कहा बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा कमरे में आए। और तब बाबा की वो अंतिम स्थिति जैसे वो हमें देखी, तब तो हम गैस नहीं कर सके कुछ कि भाई ऐसा है दादी जी हैं ही हैं और जमुना प्रसाद भाई को भेजा ही है, डॉक्टर आता होगा। डॉक्टर भी आया, देखा सब टेस्ट वगैरह करके बाबा ने कहा अब तो कुछ नहीं है और शरीर जैसे बाबा ने छोड़ दिया। तो कर्मातीत होने का लक्षण का मतलब ही ये है कि एक तो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, हमें पहले से आभास हो जाए, और दूसरा ये पांच तत्वों का जो शरीर है ना इस पर हमारा पूरा नियंत्रण रहे अंत तक। नहीं तो जब शरीर छूटता है कुछ घंटे बाद शरीर से दुर्गंध आने लगती है, शरीर अकड़ जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन बाबा का अंतिम संस्कार 21 तारीख को किया गया, 18 जनवरी की अर्ली इवनिंग में बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को जब बड़ी दीदी आ गए, मनमोहनी दीदी, उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद जब बाबा का संस्कार किया गया, चूंकि हम ये भी सौभाग्य मिला अंतिम दिन बाबा का स्नान कराने का और वो यहाँ तक लाने का, क्योंकि यंग लोगों में तो हम दो तीन ही लोग थे, बाकी तो सब बुजुर्ग ही थे, तो बाबा को लाए। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ वो था, कोई भी शरीर में दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं पड़ा, और स्टिफ तो थोड़ा था हुआ, लेकिन ऐसा स्टिफ नहीं जब बाबा को कपड़े वगैरह पहनाए तो भी शरीर में जैसे इतना अकड़ नहीं थी जैसे लौकिक रीति से होती है, सहज रीति से ही ये पांच तत्वों के ऊपर हमारा नियंत्रण है। जैसे आत्मा को हम पवित्र बना रहे हैं ऐसे इन पांच तत्वों को भी इतना पवित्र बनाए, इनकी छुट्टी लेकर ही जैसे बाबा गए। तो ये वास्तव में तीनों शब्दों की ही कमाल है और प्रत्यक्षता है, इस पर डिटेल विश्लेषण करने की आवश्यकता, अभी समय के अभाव में मैं और उतना नहीं जाता, लेकिन बस इतना जरूर बताना चाहूँगा अंतिम समय के लिए अब बेस्ट समय है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी ही चारों तरफ के वातावरण ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही अंतिम समय का अपने को लकी समझता हूँ, इतनी दूर था और बाबा ने अंतिम दो दिन अपने पास बुला लिया, कहाँ आसाम और कहाँ ये है, और जब शरीर छोड़ा तो उस आत्मा को निकट से देखने का, उस आत्मा का, शरीर का और आत्मा का, दोनों का ही दर्शन का जो सौभाग्य मिला, ऐसी स्थिति ही हम लोगों को बनाते हुए और अपनी स्वेच्छा से बाबा से सबसे छुट्टी लेते हुए हम लोग जाएं, और वो जाने का भाव यही है, शरीर तो छोड़ना ही है लेकिन मेन चीज यही है अपनी इच्छा से, और अपनी स्वेच्छा से तभी होगा जब अभी से ही हमें वो अभ्यास होगा जो बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की, एक सेकंड में परमधाम और तुरंत ही दूसरे क्षण शरीर में आने, शरीर से जाने का, शरीर से में आने का, ये अभ्यास हमारा पक्का हो। और बाबा को भी इतना पक्का हो गया था, जैसे हम लोग जब जाते थे ना तो बस बाबा देखते देखते गुम हो जाते थे, बुद्धि से जैसे शरीर से न्यारे हो जाते थे, फिर हम कोई कहते थे अच्छा बच्चे कुछ पूछा, और वो फिर शरीर में आते थे बाबा, और फिर कोई वार्तालाप हुई, लेन देन हुई, फिर शरीर से न्यारे। तो बस ये अभ्यास जितना पक्का होगा उतना उतना हम जाएंगे, और ये तीन उसमें। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, तो बहुत नशे से सुना रहे हैं और हमारा भी दिल नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते जाएं, पर घड़ी कह रही है कि नहीं स्टॉप करना है, क्योंकि समय बहुत आगे जा रहा है और आगे के भी टाइम टेबल हैं। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमें साकार बाबा के संग में ले गए, ऐसे लगा कि हम भी वो दृश्य देख रहे हैं बाबा के अव्यक्त होने का, बाबा की वो एक कर्मातीत अवस्था हमारी आंखों के सामने, बाबा ने, भाई जी ने बाबा की वो अवस्था हमारी आंखों के सामने जैसे कि साक्षात निर्मित कर दी। तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स भाई जी का कि आपने साकार बाबा के अंग संग का अनुभव शेयर किया, और अभी हम भाई जी का फिर से थैंक्स करते हैं अच्छे से ताली बजा के। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और सभी यहीं रुकेंगे, कुछ सूचनाएं देनी है, सब सूचनाएं सुन के जाएंगे।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।